ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। पतिं परमधर्मज्ञं वैदर्भिमलयध्वजं प्रेम्णा पर्यचरत् हित्वा भोगान् सा पतिदेवता पतिं परमधर्मज्ञं वैदर्भिमलयध्वजं प्रेम्णा पर्यचरद्धित्वा 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 भोगान् सा पतिदेवता पतिं अपने पति परम परम धर्मज्ञं धर्म का ज्ञाता वैदर्भी राजा विदर्भ की पुत्री ने मलयध्वजम मलयध्वज को प्रेमड़ा प्रेम से पर्यचरत भक्ति पूर्वक सेवा की हित्वा त्याग कर भोगान इंद्रिय सुख सा उसने पति देवता पति को परमेश्वर मानकर अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद राजा विदर्भ की कन्या अपने पति को परमेश्वर रूप में सर्वे सर्वा मानती थी। उसने सारे इंद्रिय सुख त्याग दिए और पूर्णतः विरक्त होकर वह अपने परम ज्ञानी पति के सिद्धांतों का पालन करने लगी। इस प्रकार वह उसकी सेवा में लगी रही। तात्पर्य आलंकारिक भाषा में राजा मलयध्वज गुरु रूप हैं और उसकी पत्नी वैदर्भी शिष्य है। शिष्य गुरु को परमेश्वर रूप मानता है, जैसा कि गुरुवाष्टक में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, साक्षाधरित्वेन मनुष्य गुरु को साक्षात भगवान मानता है। मनुष्य को मायावादी चिंतकों की विधि से गुरु स्वीकार न करके यहाँ पर बतलाई गई विधि से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि गुरु भगवान का परम विश्वस्त दास होता है, इसलिए उसे भगवान के ही समान मानना चाहिए। गुरु की एक सामान्य मनुष्य की भांति उपेक्षा या अवज्ञा नहीं की जानी चाहिए। यदि कोई स्त्री इतनी भाग्यशाली हो कि वह किसी शुद्ध भक्त की पत्नी हो तो वह इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के बिना अपने पति की सेवा कर सकती है। यदि वह अपने उच्चस्थ पति की सेवा में लगी रहती है तो उसे स्वतः ही अपने पति की आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। यदि शिष्य को प्रमाणिक गुरु मिल जाता है तो केवल उसको प्रसन्न करके वह भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त कर सकता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। यह क्रम प्राप्त श्लोक है, एक एक श्लोक को हम लोग सुन रहे हैं, इसलिए मैं पीछे बहुत नहीं जाऊंगा, लेकिन संक्षेप में इतना सब लोग जानते ही हैं। पुरंजन की कथा चल रही है और पुरंजन कोई दूसरा नहीं है, जीवात्मा ही है। तो एक तरह से ये अपनी ही कथा है। बहुत दिनों तक पुरंजन की दुर्दशा की कथा सुने हम लोग, इसके बाद उसके सदगति की कथा सुने। और सदगति की कथा एक तरह से कहा जाए तो आज से प्रारंभ हो रहा है। आप लोग पहले सुन चुके हैं कि पुरंजन एक नगरी को पसंद किया जो हिमालय के दक्षिण में है, नौ गेट वाला है, और वह स्त्री से आकृष्ट हो करके विविध प्रकार का भोग भोगने लगा। स्त्री में वह इतना आसक्त था कि मरते समय भी उसी की चिंता में रहा और वह स्त्री बन गया। विदर्भ है, नरेश की कन्या के रूप में जन्म लिया और उसी को वैदर्भी कहा गया है। वैदर्भी का विवाह हुआ मलयध्वज के साथ। उनके गति के विषय में आप सुने, भगवान की प्रेरणा से, गुरु के ज्ञान से वे भोग का त्याग करके समाधि में स्थित हो गए, अपने इंद्रियों को नियंत्रित किए और स्थाणु रिव ठूंठ वृक्ष के समान। स्थाणु कहते हैं ये जिस वृक्ष के शाखा न हो। कभी कभी आप लोग देखते हैं कि आंधी में या किसी कारण से किसी वृक्ष का शाखा टूट जाता है, काट दिया जाता है, लेकिन उसका केवल तना रहता है, उसको स्थाणु कहते हैं। और उसकी विशेषता यह है कि आंधी आने पर भी उसमें कोई विचलन नहीं होता है। वृक्ष है तो उसके पत्ते टूट टूट करके गिरते रहते हैं, हवा तेज चली तो उसके शाखा डोलते रहते हैं, उसमें विचलन होता है, लेकिन स्थाणु है तो उसमें कोई विचलन नहीं होता है। आंधी हो तूफान हो एक रस रहता है। उसी प्रकार जहाँ समाधि का वर्णन है तो प्रायः यही उदाहरण दिया गया है, मलयध्वज के विषय में भी यही उदाहरण दिया गया है कि स्थाणु जैसा ठूंठ वृक्ष के समान समाधि में स्थित हो गए, कोई उनके मन में शरीर में विक्रिया नहीं थी और वे इस संसार से उपरम हो गए। अब इसके आगे वैदर्भी के सदगति का वर्णन कर रहे हैं और इस श्लोक में कह रहे हैं कि पतिम परम धर्मज्ञम वैदर्भी मलयध्वजम प्रेमणा पर्य चरद हित्वा भोगांसा पति देवता। वैदर्भी अपने परम धर्मज्ञ पति मलयध्वज की प्रेम से सेवा कर रही थी। और हित्वा सा पति देवता, सारे भोगों का त्याग कर दी, सब प्रकार के भोग का त्याग करके अपने पति की सेवा कर रही थी, क्योंकि पति देवता वो पतिव्रता नारी थी। यह हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस अंश को पढ़ रहे हैं तो इसमें दो पक्ष है, एक कथा पक्ष है और एक अध्यात्म पक्ष है। यह रूपक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और कोई भी घटना है उसका एक आध्यात्मिक पक्ष है, उसका अध्यात्म में क्या अर्थ है इसको समझना होता है, और कोई कोई अंश ऐसा है कि उसका अध्यात्म पक्ष नहीं है, कोई कोई चीज है, कोई घटना या कोई पात्र ऐसे हैं कि केवल कथा सौंदर्य के लिए जब कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं तो कहानी रोचक होना चाहिए तो उसके लिए लिख दिया गया है। और पतिम परम धर्मज्ञम वैदर भी मलय ध्वजम, पीछे से आप लोग सुन चुके हैं, अब हम यहाँ कथा पक्ष को ले रहे हैं कि वैदर्भी के विषय में यह बात कही जा रही है कि वह प्रेम से पति की सेवा की, सब प्रकार के भोग का त्याग करके और पति की सेवा की। कोई भी पतिव्रता स्त्री है तो उसका स्वाभाविक यही धर्म है, और वैदर्भी के विषय में आप लोग पहले सुन चुके हैं इसी अध्याय के 34 नंबर के श्लोक में कि हित्वा गृहान सुतान भोगान वैदर्भी मदिरेक्षणा अन्वधावत पांड्येशम ज्योत्स्ने व रजनी करम। जब पांड्य देश के राजा मलयध्वज घर का त्याग किए, गृहस्थी का त्याग किए, अपने राज्य को पुत्रों को सौंप करके और घर से निकले तो वैदर्भी भी घर से निकल गई। उसका वर्णन कर रहे हैं कि हित्वा गृहान सुतान भोगान वैदर्भी मदिरे क्षणा अन्वधावत पांडेशम ज्योत्ने व रजनी करम। जैसे चंद्रमा जिधर जाते हैं तो चंद्रमा का किरण भी उधर ही रहती है, ऐसा नहीं है कि चंद्रमा पूर्व दिशा में हो और चंद्रमा की किरण पश्चिम दिशा में हो, किरण और चंद्रमा का संबंध है, चंद्रमा जिधर रहते हैं उधर से ही किरण निकलती रहती है, चंद्रमा और किरण अव्योज्य हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। और वैदर्भी और मलयध्वज के विषय में उदाहरण यही दे रहे हैं कि ज्योत्स्ने व रजनी करम, जैसे चंद्रमा का अनुगमन चंद्रमा की किरण करती हैं वैसे ही वैदर्भी अन्वधावत पांड्येशम, पांड्य नरेश का वह अनुगमन की, वे घर छोड़े या भी घर छोड़ दी। और वैदर्भी का वर्णन कर रहे मदिरे क्षणा, वैदर्भी के एक शब्द दे रहे कि मदिरे क्षणा, मदिरेक्षणा का क्या अर्थ है कि जिसके इक्षण, जिसके दृष्टि, जिसके आंख ही मदिरा के समान है। जैसे व्यक्ति मदिरा का पान करता है तो उन्मत्त हो जाता है, अपना शुद्ध बुद्ध खो जाता है, और वैदर्भी के विषय में कह रहे हैं कि उसके आंख ही मदिरा है। जो वैदर्भी का दर्शन करेगा, उसको देखेगा और उसका मन क्षुब्ध हो ही जाएगा, तो एक शब्द दे करके उसके जुवावस्था का वर्णन कर रहे हैं। वैदर्भी अभी वृद्धा नहीं थी, अभी बिल्कुल युवती थी, बिल्कुल युवती थी, और एक शब्द से उपलक्षण से उसके सौंदर्य को समझ लेना चाहिए, उसके अवस्था को समझ लेना चाहिए। वो कह रहे हैं कि वैदर भी मदिरे क्षणा, बिल्कुल युवती है, सुंदर है, लेकिन उसके विषय में कह रहे हैं कि हित्वा गृहान सुतान भोगान, अपने सारे भोग का त्याग कर दे, पुत्रों का त्याग कर दे, गृह का त्याग कर दे और अन्वधावत पांड्य स, वह पांड्य नरेश का अपने पति का अनुगमन की। और जो पतिव्रता स्त्री है उसके चरित्र में यह देखा जाता है, अपने भोग का ध्यान नहीं रखती है। श्रीमद् भागवतम आप लोग पढ़ते हैं, प्रथम स्कंध में धृतराष्ट्र के गृह त्याग का वर्णन किया गया है। विदुर जी छोटे भाई हैं धृतराष्ट्र के, और विदुर जी जब मैत्रेय ऋषि से कथा सुन रहे थे तो इसी प्रसंग को सुन करके पुरंजन के उपाख्यान को सुन करके, राजा बृहत्सत के उपाख्यान को सुन करके उनको अपने भाई धृतराष्ट्र का स्मरण हो आया। जैसे पुरंजन आसक्त व्यक्ति है, ये राजा आसक्त हैं अपने घर में, तो इनके आसक्ति को सुन करके विदुर जी को अपने भाई का स्मरण आया और प्रश्न बहुत किए थे मैत्रेय जी से, लेकिन सब प्रश्न नहीं सुने। वे बीसन प्रश्न किए थे या उससे भी अधिक प्रश्न किए थे, लेकिन दो चार प्रश्न का उत्तर सुने और जातक भक्ति गोविंद है, उसी से भगवान में भक्ति हो गई और तेभ्यश चोपर राम हो। अब आगे के प्रश्नों के विषय में वे रुचि नहीं रखे, प्रश्न के उत्तर से विरत हो गए और पुनः वे हस्तिनापुर लौट गए। तीर्थ यात्रा के क्रम में मैत्रेय ऋषि से भेंट हुई थी, लेकिन अपने ही प्रश्न के उत्तर से विरत हो गए और धृतराष्ट्र के पास गए। धृतराष्ट्र का वह हित करना चाहते थे और धृतराष्ट्र को विविध प्रकार से ज्ञान दिए, और धृतराष्ट्र को जब ज्ञान दिए तो उसका परिणाम हुआ कि धृतराष्ट्र अर्धरात्रि में ही गृह का त्याग कर दिए, किसी को कुछ बतलाए नहीं। रात्रि संदर्शित अध्वा, जैसा विदुर जी मार्ग बतलाए थे, जो उपदेश किए थे उसी का अनुसरण करते हुए वे गृह का त्याग कर दिए, अर्धरात्रि में त्याग किए। भ्रातृ संदर्शिताध्वा का एक अर्थ है कि जैसा विदुर जी उनको बतलाए थे, यह दूसरा अर्थ किया जाता है कि धृतराष्ट्र अंधे हैं और विदुर जी खुद उनको पकड़ करके ले गए, आगे आगे चल रहे थे और रास्ता का ज्ञान विदुर जी दे रहे थे। विदुर जी जैसे जिस रास्ते से चल रहे थे, जो रास्ता दिखा रहे थे, उसी रास्ते से वे अर्धरात्रि में ही हिमालय में चले गए, हरिद्वार चले गए। और इसके बाद सुत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि पतिम प्रयांतम सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानु जगाम साध्वी। जब गांधारी देखी कि हमारे पति गृह का त्याग कर रहे हैं, तो पतिम प्रयांतम सुबलस्य पुत्री, वो राजा सुबल के पुत्री अपने पति को जाते हुए देह करके चानु जगाम, वह भी पीछे पीछे चल दी उनका अनुगमन की। भी क्यों ऐसा है कि साध्वी वे पतिव्रता है। सुबलस्य पुत्री, वो राजा सुबल के पुत्री है, राजकुमारी है, उसके शरीर बिल्कुल कोमल हैं, वह क्यों घर का त्याग कर रही है, हिमालय में जा रही है जहाँ बाह्य दृष्टि से बहुत कठिनाई होती है, ऐसा कोई संशय कर सकता है, प्रश्न कर सकता है, अश्वत्थ गोस्वामी कह रहे हैं कि हिमालय न्यस्त दंडम प्रहर्षम मनस्वी नाम विवसत संप्रहार। यद्यपि वह सुकुमारी है लेकिन फिर भी अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रही, बाह्य कष्ट का ध्यान नहीं रख रही है, बल्कि उस कष्ट का वर्ण करने में उसको प्रसन्नता है। एक उदाहरण दे रहे हैं कि वैसे ही प्रसन्नता है जैसे न्यस्त दंड मनस्वी नाम विवसत संप्रहार, जैसे कोई युद्ध के आवेश में है, वीर रस के आवेश में है, और उस समय उस पर विपक्ष के लोग बाण मारते हैं, बाण शरीर में चुभता है, तो वीर को मनस्वी को उसे कष्ट नहीं होता है, बल्कि युद्ध के लिए और उत्साह बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार जिनको आत्म साक्षात्कार करना है, भगवान की अनुभूति करनी है, भगवान का दर्शन करना है, तो अपने शारीरिक कष्ट का ख्याल नहीं रखते हैं, उधर उनका ध्यान ही नहीं जाता, बल्कि शारीरिक कष्ट से उनका उत्साह और बढ़ जाता है। हिमालयम न्यस्त दंडम प्रहर्षम, जो सन्यासी हैं वो हिमालय का वर्ण करते हैं, क्योंकि हिमालय का वातावरण ऐसा है कि वहाँ भगवान की अनुभूति सहज रूप में की जा सकती है, वहाँ विक्षेप के अवसर कम हैं। वो कह रहे हैं कि हिमालय न्यस्त दंडम प्रहर्षम मनस्वी नाम विवसत संप्रहार, जैसे जो योद्धा हैं और धर्म युद्ध में कोई विपक्ष उन पर प्रहार करता है तो उससे उनकी प्रसन्नता होती है, तो उसी प्रकार कष्ट के जीवन का वर्ण करने में भी कुछ लोगों को प्रसन्नता होती है। किसको प्रसन्नता होती है? न्यस्त दंडम, जो सन्यास ग्रहण कर रहे हैं और आगे के कष्ट में भी उनको प्रसन्नता होती है। और जैसे गंधारी अपने कष्ट का कोई ख्याल नहीं रखी, उस पर उसका ध्यान नहीं था, वो पतिव्रता साध्वी है, वो अपने पति का अनुगमन की, तो उसी प्रकार वैदर्भी का वर्णन कर रहे हैं कि हित्वा गृहान सुतान भोगान वैदर्भी मदिरेक्षणा। मदिरेक्षणा शब्द से व्यक्त कर रहे हैं कि यद्यपि वह बिल्कुल ज्योति है लेकिन फिर भी अपने घर का त्याग की, पुत्र का त्याग की, भोग के सामग्री का त्याग की और अन्न धावत पांड्यसम, वो पांड्य नरेश का अनुगमन की, वैसे अनुगमन की जैसे चंद्रमा का किरण चंद्रमा के साथ होता है। और वहां जा करके पतिम परम धर्मज्ञम वैदर्भी मलयध्वजम प्रेमणा पर्यचरद हित्वा भोगान सा पति देवता। घर के भोग का त्याग कर दी लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां गई अपने पति के पास तो वहां बहुत डिमांड करने लगी या बहुत सुविधा जुटाने लगी, घर के भोग का भी त्याग की और कह रहे हैं कि हित्वा भोगान, वहां भी किसी भोग की अपेक्षा नहीं की और प्रेम से प्रेमणा पर्यचरत प्रेम से अपने पति की सेवा की। और पति की सेवा करने से स्वाभाविक सिद्धि मिल जाती है। समय का अभाव है, हम विस्तार से नहीं बोल सकते, लेकिन आप लोग कर्दम ऋषि और देवहूति का प्रसंग पढ़ते हैं। जब कर्दम ऋषि का विवाह हुआ, देवहूति उनके पास गई, कर्दम जी समाधि में थे, भजन में थे, और देवहूति अपने सब प्रकार के सुख का त्याग करके, यहाँ तक कि अपने शरीर का भी उपेक्षा करके पति की सेवा करती रही, बहुत दिन तक सेवा करती रही, उसका शरीर बिल्कुल सूख गया था। लेकिन जब कर्दम जी का ध्यान अपने पत्नी के तरफ गया उसके शरीर को देख करके उनको दया आ गई, बिल्कुल सुख गई थी, और वे स्पष्ट उससे कहे कि मैं जो भी सिद्धि प्राप्त किया हूं तो उसको तुम उसका आधा हिस्सा स्वाभाविक प्राप्त कर जाओगी सेवा के चलते, तो तुम्हारे मन में और भी कोई भी कामना हो तो तुम उसको मांग लो, मैं पूरा कर दूंगा। और कश्यप नहीं कर्दम जी कह रहे हैं कि हमें जो भी सिद्धि प्राप्त हुई है तो उसका आधा हिस्सा स्वाभाविक ही तुमको प्राप्त हो जाएगा सेवा के चलते। तो यह सिद्धांत है कि कोई पत्नी अपने पति की सेवा करती है तो पति को जो लाभ मिलता है, जो आध्यात्मिक उन्नति होती है, जिस प्रकार की आध्यात्मिक उन्नति होती है, और पत्नी यदि साधना न भी करे तो सेवा से ही पति के साधना का लाभ मिल जाता है। और इस प्रकार वैदर्भी के चरित्र का निरूपण कर रहे हैं कि वह अपने पति की सेवा प्रेम से कर रही थी। कई एक श्लोक में इसका वर्णन किया गया है वह किस प्रकार सिद्धि की प्राप्ति की, तो उस अंश को आप लोग आगे के क्लास में सुनेंगे। वो कथा पक्ष के साथ ही अध्यात्म पक्ष है। ये जो वैदर्भी है वह शिष्य स्थानीय है और पति मलयध्वज हैं, पांड्य नरेश हैं, और यह गुरु स्थानीय है। वास्तव में अध्यात्म जगत में कई एक दृष्टि से स्त्रियां गुरु हैं, वे आदर्श हैं। कभी कभी स्त्रियां हम लोगों से पूछती हैं, कहती हैं कि स्त्रियों को हे शास्त्र में क्यों कहा गया। भाई जो हे पक्ष है उस दृष्टि से उनको हे कहा गया है। जैसे यहां तक शुद्धता की बात है तो स्त्रियों के चित्त का और शरीर का ऐसी रचना है, ऐसा बनावट है कि स्वाभाविक ही अशुद्धि का अवसर है, तो उस दृष्टि से उनको हे कहा गया है। लेकिन जहां श्रद्धा की बात है, सेवा की बात है, वहां कभी उनको हे नहीं कहा गया, वही आदर्श है। और खास करके जो गौड़ीय वैष्णव हैं तो उनके आदर्श तो स्त्रियां ही हैं, ब्रज की स्त्रियां ही हैं। और एक दृष्टि से और भी स्त्री का व्यवहार आदर्श है। आप लोग शास्त्र में गुरु सेवा की महिमा सुनते हैं और गुरु की सेवा के विषय में स्त्रियां ही आदर्श हैं। जैसे कोई स्त्री अपने पति की सेवा करती है वैसे ही एक शिष्य को अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। जिस तत्परता के साथ एक गृहिणी अपने स्वामी की सेवा करती है उसी तत्परता के साथ एक शिष्य को अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए, और उसी बात को यहाँ व्यक्त किया गया है। जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट शब्दों में लिख रहे हैं कि अलंकारिक भाषा में राजा मलयध्वज गुरु रूप हैं और उसकी पत्नी वैदर भी शिष्य है। वो अध्यात्म पक्ष को ग्रहण किया जाए तब इसका क्या अर्थ होगा। पतिम परम धर्मज्ञम वैदर भी मलयध्वजम प्रेमणा पर्य चरद हित्वा भोगान सा पति देवता। वैदर भी गृह का त्याग करके अपने पति के साथ गई, और यदि वैदर भी को शिष्य के स्थान पर ग्रहण किया जाए और मलयध्वज को गुरु के स्थान पर, तो इसका अर्थ यह होगा कि यदि गुरु निर्जन स्थान में एकांतिक भजन के लिए प्रस्थान कर रहा है तो शिष्य भी वहां जा सकते हैं। कम से कम जो उन्नत शिष्य हैं जैसा श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं तो उनको तो जाना ही चाहिए। और गुरु भजन कर रहा है, निर्जन स्थान में वास कर रहा है, एकांतिक भजन में लगा हुआ है, और कोई शिष्य केवल उसकी सेवा कर रहा है, गुरु को जो सिद्धि मिलेगी वह सिद्धि शिष्य को भी प्राप्त हो जाएगा। अब वैदर्भी का वर्णन हम सुनते हैं तो हित्वा गृहान सुतान भोगान वैदर्भी मदिरेक्षणा। अब मदिरेक्षणा का एक शिष्य के रूप में अर्थ किया जाए अध्यात्म पक्ष में तो क्या अर्थ होगा? मदिरेक्षणा, मदिरा, मदिरा आप समझते हैं ना, शराब को कहते हैं। मदिरा का गुण है कि वो मतवाला कर देता है। मदिरेक्षणा ये भगवान का रूप है तो यह मदिरा से अनंत गुणा अधिक क्षुब्ध करने वाला है। भगवान पर जब ही दृष्टि जाती है तो व्यक्ति अपना शुद्ध बुद्ध खो जाता है। अब ये सब विषय आ जाते हैं तो बहुत बोलने की इच्छा करने लगती है, लेकिन समय की सीमा है। और श्रीमद् भागवतम में अनेक उदाहरण है कि कैसे व्यक्ति भगवान के रूप से उनके स्पर्श से प्रभावित हो जाता है। पंचम स्कंध में यह वर्णन किया गया है कि नाग कन्याएं संकर्षण देव की आराधना करती है। एक प्रश्न होगा कि संकर्षण देव तो शराब पी करके, आसव पी करके मतवाले रहते हैं, उनके आंख चढ़े रहते हैं, कैसे स्त्रियां नाग कन्या जो बहुत सुकुमारी हैं, कोमल हैं, सुंदर हैं, वे कैसे उनकी आराधना करती हैं? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं असदृश यह प्रतिभाति माया छीबे व मध्वा सवताम्र लोचन। अरे जिनके दृष्टि असत है, जो वास्तविकता को नहीं समझ रहे हैं, उनके लिए ही भगवान मतवाले लगते हैं। और ऐसा लगता है कि नशा में उनका आंख चढ़ा हुआ है और क्रोध में हैं या उन्मत्त हैं। सच्चाई यह है कि न नाग बद्ध हो अरहण इसिरे हरिया यत पादयो स्पर्शन धर्ष तेंद्रिया। जो नाग की कन्याएं जाती हैं तो भगवान की पूजा नहीं कर पाती हैं। भाई पूजा क्यों नहीं कर पाती हैं? पूजा करने के लिए ही जाती हैं, कई एक सामग्री लेकर के जाती हैं, लेकिन ज्यों ही अभी उनके चरण का स्पर्श करती हैं तो उस स्पर्श से उनके मन में विकार उत्पन्न हो जाता है, क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, काम उत्पन्न हो जाता है, आलिंगन की स्पृहा उत्पन्न हो जाती है। और नाग कन्याएं लज्जा में पड़ जाती हैं कि यदि हमारे मनोभाव को हमारे स्वामी को पता चल जाएगा तो हमारे विषय में उनकी कैसी दृष्टि हो जाएगी। तो लज्जा के मारे वे पूजा नहीं कर पाती हैं। आप कृष्ण करणामृत ग्रंथ का नाम सुने हैं, उसके प्रारंभ में ही बिलोमंगल ठाकुर वस्तु का निरूपण कर रहे हैं। बिलोमंगल ठाकुर वैराग्य प्राप्त करके जब वृंदावन के तरफ आ रहे हैं और मानो उनसे कोई पूछ सकता है कि अब वृंदावन जा रहे हैं वहाँ क्या है, तो कह रहे हैं कि अस्ति वस्तु अस्ति स्वस्थ तरुणी कराग्र बिगलत कल्प प्रसूना प्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम। वे कह रहे हैं कि वृंदावन में वस्तु अस्ति, एक वस्तु है, वस्तु है, वस्तु ये क्या होता है? और वस्तु का अर्थ ही कृष्ण होता है, जैसा उद्धव जी कहे हैं कि बिना च्युतात वस्तु तराम न वाच्यम। ये वस्तु शब्द से ही वास्तविक चीज बनता है। वस्तु का अर्थ है कि जो तीनों काल में है, तो एक भगवान को छोड़ करके दूसरे को वस्तु कहा ही नहीं जा सकता, चाहे वो भूत काल का हो, भविष्य काल का हो, वर्तमान काल का हो, छोटा हो, बड़ा हो, स्थावर हो, जंगम हो, एक अच्युत को छोड़ करके दूसरे को वस्तु नहीं कहा जा सकता। तो कह रहे हैं कि बिना च्युतात वस्तु तराम न वाच्यम, बिना अच्युत को वस्तु नहीं कर सकते। तो वस्तु का अर्थ कृष्ण है, अच्युत है। या दूसरा अर्थ करेंगे तो जो सबके हृदय में रहता है उसको वस्तु कहेंगे, वस्ती इति, वसती इति वस्तु, जो वास करे उसको वस्तु कहेंगे, या जिसमें सारा संसार निवास करता है उसको वस्तु कहेंगे। वस्तु अस्ति, वस्तु है, जो सबको आच्छादित करके कवर करके है उसको वस्तु कहेंगे। तो भाई क्या वो ब्रह्म है? तो नहीं, किशोराकृति, उसकी आकृति है, वो किशोरावस्था का है, या वह किशोर है और अकृति, एकदम नवजुवक है लेकिन काम उसको कुछ नहीं है, असाइनमेंट कुछ नहीं है वे। और उसके विषय में बतलाइए तो कह रहे हैं कि स्वस्थ तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम। स्वर्ग से स्त्रियां फूल लेकर के आती हैं, कल्प वृक्ष के फूल लेकर के आती हैं कृष्ण को अर्पित करने के लिए, लेकिन कृष्ण पर जैसे ही दृष्टि जाती है तो अपनी शुद्ध भूत खो जाती है, और कराग्र विगलत उनके हाथ से फूल गिर जाता है, लेकिन भगवान कृपालु हैं, उस फूल को भी स्वीकार करते हैं। तो हमें केवल यह कह रहे हैं कि वैदर्भी का वर्णन किया गया मदिरेक्षणा, मदिरेक्षणा का अर्थ है कि जिसके दृष्टि मदिरा पर है, तो कृष्ण सबसे बड़े मदिरा हैं, कृष्ण बलराम ये मदिरा हैं, हमको उन्मत्त करने वाले, सब कुछ का त्याग कराने वाले हैं। जैसे कोई व्यक्ति मदिरा पी लेता है तो अपने घर गृहस्थी का ध्यान नहीं रखता, तो उसी प्रकार कृष्ण ही मदिरा हैं, मंदिर में स्थित श्री विग्रह ही मदिरा है, उसी पर जिसकी दृष्टि है उसको मदिरेक्षणा कहा जाएगा। यह अर्थ श्रीपाद जीव गोस्वामी किए हैं। तो कह रहे हैं कि ये वैदर्भी है, इसका भगवान पर ध्यान है, इसलिए जब गुरु निर्जन भजन के लिए जा रहे हैं तो वह भी उनके पास गई और प्रेमणा पर्यचरत, प्रेम से उनकी सेवा करने लगी। और गुरु की सेवा मात्र से सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। अब एक शिष्य के अर्थ में लिया जाए, गृह का अर्थ है कि उसका जो अपना आश्रम है, वास स्थान है, उसका त्याग कर सकता है, और भोगान मतलब जो श्रवण कीर्तन साधना है उसका भी किंचित रूप में त्याग कर सकता है। यह श्रवण कीर्तन से जो भोग, जो सुख उत्पन्न हो रहा है उसका भी त्याग कर सकता है, इसको छोड़ करके भी गुरु की सेवा करनी चाहिए। अपने भजन में थोड़ी सी रुकावट भी आ रही है, थोड़ी बाधा भी अनुभव हो रही है, तो उसको भी सह करके गुरु की सेवा करने से चरम सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। यह संकेत है, यह श्रील प्रभुपाद जी इस क्रम में लिखते हैं कि खास करके जो गृहस्थ हैं, जिनके पास बहुत सुविधा है, बहुत आराम से रहते हैं, लेकिन अवसर आने पर जहाँ गुरु की सेवा की बात है तो अपने उस सुख सुविधा का ध्यान नहीं रखना चाहिए। घर में हैं तो बहुत प्रकार की सुविधा है, लेकिन उसको त्याग करके जो गुरु की सेवा करेगा तो उसको सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार इस श्लोक में कई एक बातों का संकेत है, हम थोड़ा सा उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किए, और यह क्रम कई एक श्लोकों में है, तो आगे के जो वक्ता आएंगे इस विषय को स्पष्ट करेंगे। हरे कृष्णा।